आइए संस्कृत व्याकरण में। अच्छा इंटरेस्ट ले रही हैं आप, अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है, तो पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है। आपकी व्याकरण परिपूर्ण होने वाली है और 60 सूत्रों की परीक्षा 31 जनवरी को होने वाली है। ये परीक्षा आपकी संस्कृत व्याकरण की पहली बार प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रहेगी। 20 प्रश्न रहेंगे और एक एक प्रश्न के चार चार उत्तर, और चार चार उत्तर में केवल एक उत्तर सही रहेगा, उसमें ही आपको टिक करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे। तो अब आपको खोलना है पेज नंबर 20, जो पीडीएफ आपके पास पहुंचा है उसमें खोलिएगा पेज नंबर 20, यानी हम 59 नंबर के सूत्र में आएंगे, 59th। और उससे पहले विग्रह करना है आपको कि क्या कल आपने देवी ग्रहम पटुहस्ता इनको बना लिया कि इनकी संधि नहीं होती, जो कि त्यों रहते हैं। अब आप आइए पितृ प्लस यम, देखो पितृ प्लस यानी जिसमें री होता है नीचे उसको री पितृ, और जिसमें रा होता है तो त्रा बोलते हैं उसको, तो पितृ प्लस यम। अब इसकी संधि कैसे करनी है तो अनतिक्रमण विश्लेषी, इससे पहले पित और री निकाला हमने और यम, उसके बाद सूत्र लगता है ये सूत्र कहता है कि आगे तद्धित के यकार के आने पर री को र हो जाता है। अब देखो एक सूत्र पहले आया था रम रिवर्ण, यानी री को र हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है तद्धित करम, यानी इस व्याकरण के अंदर संधि के बाद लिंग प्रकरण आता है, लिंग प्रकरण के बाद कारक तद्धित समास तिगंत कृदंत, ये सब अलग अलग चैप्टर हैं। तो तद्धित के अंदर प्रत्यय होते हैं, तो उस प्रत्यय के मध्य या प्रत्यय भी है, जैसे यण होता है, तो ये या तद्धित का या यहाँ पर पितृ प्लस यम आया, तो कह रहे आगे तद्धित के यकार के आने पर री को र हो जाता है, तो री को ये र कर दिया गया, र हलंत है, तो अब क्या रहा पित र यम, समझे ना पित र यम। तो इस सूत्र के द्वारा यकार के लिए एवं री को र के लिए ये संधि दी है। यहाँ पर तद्धित का यकार है, तद्धित के नियम आपको हम जब तद्धित प्रकरण आएगा वहां पर प्रत्यय हुआ करते हैं उसमें हम बताएंगे। अभी आपको केवल ये जानना है कि यम का यह जो है ये तद्धित का यह है, तो उसको यम के आने पर री को र हो गया, तब उसका बन गया पित्रम, पित्रम
पित्रम,
यानी पित्रियम नहीं बना, अब पित्रम बन गया, यानी पित का आधा ता और री का रा, इतना मिलकर के ऐसा आधा रा बनता है और यम ज्यों का त्यों रहा पित्रम। ऐसे ही था भ्रात्र प्लस यम, तो भ्रात्रम भ्रात्रम बन गया, ऐसे ही मात्रम, तो मात प्लस र री को र हो गया, और यम बराबर मात्रम, तो पित्रम भ्रात्रम मात्रम। अब अगर आपसे कोई पूछेगा मात्रम कैसे बना उसका विग्रह कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि मातृ प्लस यम है और र रितस तद्धिते ये सूत्र से री को र हो गया और फिर संधि हो गई तो मात्रम बन गया, ऐसे ही भ्रात्रम बना, ऐसे ही पित्रम बन गया। अब इसके बाद में आता है शब्द गो प्लस युति ही, हाँ अब इसमें देखो गो प्लस युति ही है, अब सूत्र लगता है गव्युतिरध्वमाने, हाँ करें अध्वमाने गव्युति ही, माने मार्ग के माप अर्थ में ये इतने किलोमीटर है या इतने कोस है, ये मार्ग को मापने का तरीका होता है। चीज को नापने का तरीका किलोग्राम होता है और माप मार्ग के मापने का तरीका मील, कोस, किलोमीटर ये होते हैं। तो इसमें कहा अधमाने माने मार्ग के माप के अर्थ में गव्युति शब्द निपात से सिद्ध होता है, अर्थात इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता। तो अब इसका विग्रह करते हैं गोयुति का, गवाम युति गव्युति, माने जिस रास्ते से गाय भैंस वगैरह पशु निकलते हैं तो उस रास्ते को मापने करने, यानी साधु लोग जब विहार करते हैं तो उनके लिए कहा कि जब प्रातः काल की मंगल बेला में पशुओं के निकलने का समय हो जाए तो गाय भैंस जिसे अपने पैरों से रौंद देते हैं उस प्रासुक जमीन से सड़क से आप जाएं। तो यहाँ पर उसका थोड़ा विग्रह किया, मार्ग के माप अर्थ में गवाम युति केवल समझने की चीज है, गायों की युति चलने का मार्ग। तो इसमें क्या क्या गो को विग्रह किया, ग प्लस ओ और युति ही, तो ग प्लस ओ तो ओ ओ आओ, इस सूत्र से आओ बन गया, ग आओ तो गव हो गया और युति की उसमें संधि कर दी तो गव युति ही बन गया। गव युति का अर्थ होता है दो कोस, गव युति का अर्थ होता है चार मील। यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्थे किम सीदति, ये एक श्लोक आता है इष्टोपदेश के अंदर कि जो व्यक्ति दो कोस तक चल सकता है वह आधा कोस चलने में क्या थक जाएगा। ये बात कही है धर्म की उसमें कि जो धर्म हमें मोक्ष को प्राप्त करा सकता है क्या वो संसार के सुखों को नहीं प्राप्त करा सकता, अर्थात करा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से। उसी प्रकार से जैसे जो दो कोस जाने की क्षमता रखता है तो वो आधा कोस तो सहज में चला जाता है। तो ये गवाम युति गव्युति बन गया, गवाम माने गाय, गायों की युति, गायों की चलने का कहा है। तो जब गो शब्द के रूप बनाएंगे ना तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में गवाम बनेगा। तो ये इस प्रकार से आपको जिसने सूत्र का नियम नहीं लग करके संधि आदि कार्य ना हुए उसको कहते हैं निपात। निपात से सिद्ध माने स्वाभाविक रूप से उनकी सिद्धि हो जाती है। तो गो युति का केवल आपको ये बताया विग्रह कि गवाम युति गायों के चलने की स्थिति का नाम है गव्युति, जब गायें चलती हैं अपने पैरों से तो उसके माप को युति गव्युति कहते हैं। तो ये गव्युति रद्धमाने सूत्र यहाँ तक 60 सूत्र हो गए हैं, अब आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो थोड़े से प्रश्न करती हूँ, क्लास कल भी चलेगी परसों भी चलेगी आपकी, पिछली पिछली क्लासों को चलाऊंगी। तो अब आप के समक्ष पहला प्रश्न आ रहा है, जिन शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप बताएं। हमने सबसे शुरू शुरू में ही इस व्याकरण में जिन शब्द के रूप पढ़ाए थे तो जो 7 विभक्ति हैं उनमें से षष्ठी विभक्ति में जिन शब्द के तीनों वचन में रूप आपको बताना है। हैंड रेज करेंगे, हाँ जो लोग बताना चाहते हैं हैंड रेज करें और जिन शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप बताएं। देखो किन्होंने हैंड रेज किया है, इनको स्पॉटलाइट करें और अनम्यूट करें, बताइए इनका क्या नाम है। शशि जी नहीं, हेमंद्र क्या नाम, बहुत अच्छा, भले ही देख करके पढ़ रहे हैं लेकिन कम से कम पहचान तो की आपने, जिनस जिनयो और जिनाम, ये षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन के रूप हुए। अब आगे दूसरा, धर्म शब्द की 7 विभक्ति वाला श्लोक पढ़ना है, आपके शब्दों की शुद्धि को जानने के लिए किया गया है। धर्म शब्द का एक श्लोक इसके अंदर है, उसको अच्छे से पढ़ करके सुनाना है, देख करके ही। पेज नंबर 7 पर धर्म शब्द के 7 विभक्ति का श्लोक है उसको पढ़ना है, जिसको अच्छे से पढ़ना आता है हैंड रेज कीजिए। हैं अनीता जी, कमल मंदी, चलिए अनीता जी सुनाइए।
दामी माता जी, धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मे बुद्धाश्चिन्वते, धर्मे मेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। धर्मान् सत्यप्रय सुहृद् भवभृताम्, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्त महां धत्ते प्रतिदिनं, हे धर्म माम पाल्य।
बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, इसमें थोड़ा सा जैसे धर्मम बुधाश्चिन्मते, जो थोड़ी सी अशुद्धि रही है इसको और सुधारिए। धर्मम बुधाश्चिन्मते और धर्मान् नास्ति परः, ये पंचमी विभक्ति थी। धर्मान् नास्ति परः सुहृद् भवभृताम् धर्मस्य मूलं दया, बहुत ही अच्छा श्लोक है। और ये गौतम स्वामी गणधर स्वामी के द्वारा बनाया हुआ श्लोक, हम लोग प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो इस श्लोक को आप लोग याद कर लें तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न है, सवर्णता कितने प्रकार की होती है? सवर्णता कितने प्रकार की होती है? पेज नंबर 8 से आपको बताना है। मैं इतना भी बता देती हूँ क्योंकि ये आपका टेस्ट चल रहा है, जब पेपर होगा तो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको स्वयं में लिखना होगा। चलिए, सवर्णता कितने प्रकार की होती, जो लोग बताना चाहें हैंड रेज करें। हैं, काफी हो गए जब उनको। चलिए और किसी को ले लो, रोली तो बताओ।
नंदामी माता जी, सवर्णता चार प्रकार की होती है। हेलो,
हाँ हाँ रोली,
सवर्णता चार प्रकार की।
मैं पूछते हैं वो चार प्रकार कौन कौन से हैं, दूसरे कोई बताएंगी हैंड रेज करें जिनको आती हो कि सवर्णता चार प्रकार की जो है वो किस प्रकार से चार प्रकार की है, बताइए। जिनको आता है हैंड रेज करें, इसी के अंदर है, बस केवल उसको समझने की बात है। जो इसके अंदर श्लोक दी गई है चार प्रकार की सवर्णता, उसका अर्थ भी नीचे है, बताइए। ईशा जी बता रही क्या, कौन है? लीशा, हाँ बताइए लीशा जी, इनको अनम्यूट करो। लीशा जी बताइए, तो ये समझ में आ रहा है ना, रस, रस का मतलब क्या, आ प्लस आ, और दीर्घ दीर्घ मतलब आ प्लस आ, और दीर्घ ह्रस्व बड़ा आ प्लस छोटा आ, और चौथी ह्रस्व और दीर्घ यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ, ऐसी चार प्रकार की सवर्णता बताई गई है। एक ही वर्ण में यानी जो वर्ण का जोड़ा होता है, शब्द का जोड़ा, उसको कहते हैं सवर्ण। जैसे आ आ आ ई हो तो वो सवर्ण नहीं होंगे, समझे ना, और ई ई ये सवर्ण है। तो इनमें सभी स्वरों में ये जो सवर्ण वर्ण है इनमें चार प्रकार की सवर्णता लग जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम अभी और पूछते हैं थोड़ा सा कि तवौदनम कैसे बना, यह आपको विग्रह करके और सूत्र के द्वारा बताना है तवौदनम। चलिए संकेत में मैं आपको बताती हूं कि सूत्र नंबर 39-40 पर आ जाइएगा। सूत्र नंबर 39-40 पर आइए और इसका डिटेल कीजिए कि तवौदनम का विग्रह क्या होगा। जिनको आता है हैंड रेज करें ताकि आपको स्पॉटलाइट किया जाए। तवौदनम कौन किसी को करो, अर्चना जैन को करिए। हाँ अर्चना जी, अर्चना जी बताइए। आशीर्वाद नहीं, पहले तो इसका विच्छेद करिए, क्या शब्द क्या है, तव प्लस ओदनम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको अलग अलग कीजिए। इसे क्या होता है, हाँ तो अवर्ण कहाँ है, हाँ तो तव के आ को व को हलंत करके इसमें से आ निकाला, तव अ प्लस ओदनम, ओदनम, और फिर ओ के आने पर तव के आ को अ हो गया और इधर ओदनम के ओ का लोप हो गया, समझ गए। तव फिर संधि किस सूत्र से किया है, संधि का सूत्र कौन सा है, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, ये जो 25 नंबर का, कौन सा नंबर का, 25 नंबर का ही है ना शायद, 25 नंबर का सूत्र है, इससे ये संधि हो जाती तब तव उदनम बन गया। तो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया हो तो आप लोग हैंड रेज करके और अपनी स्वीकृति बताएं कि ये तव उदनम आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, सोम शब्द कैसे बना, सोम शब्द का विग्रह और उसकी संधि करके बताना है कि सोम शब्द कैसे बना। सूत्र नंबर 41 पर आइए आप, सूत्र नंबर 41 पर आइए, पहले इसका विग्रह कीजिए क्या है, तो जिनको आता हो तो वो हैंड रेज करें। देखो शोभा जी अजमेरा, इन्होंने भी हैंड रेज किया है, आप बताएंगे क्या शोभा जी, सूत्र नंबर 41 को देख करके और आप बताइए। बहुत ही सरल, ये बिल्कुल बच्चों की व्याकरण है और उससे आप, हाँ बताइए, पहले विग्रह विच्छेद कीजिए। सा प्लस ओम, बड़ा सा है, सा प्लस ओम, फिर उसके बाद क्या हुआ, सा प्लस आ प्लस ओम, बहुत बढ़िया। आप बताइए, नहीं नहीं और बताइए, सूत्र नंबर 41 ने क्या किया, तो कौन से अवर्ण का लोप हो गया, सा के आ का लोप हो गया, तो स हलंत बचा और आगे ओम है ना, तो सोम बन गया। आप जरा एक बार संधि करने के सूत्र को बोल दीजिए, संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, मैं बार बार कहती हूं कि उसको आप लोग बोल बोल करके ही काम करिए तो आपको याद हो जाएगा। 25 नंबर का सूत्र है, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। आप ये आपके सौभाग्य का विषय है कि जो चीज आपने कभी नहीं सोची होती होगी वह भी आपको व्याकरण के माध्यम से मिल रही है कि आपका आगे कोई भी स्तोत्र वगैरह पढ़ें तो उसकी शुद्धि रहे, इसके लिए आपको ये व्याकरण में संधि प्रकरण पढ़ाया गया है। ये संज्ञा संधि और स्वर संधि, दो संधि आपकी पूर्ण हुई हैं, तो आप लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है, ये जान करके अच्छा लग रहा है। आप केवल यहाँ पर हमारी जो दीदी लोग बैठी हैं इनसे एक प्रश्न करते हैं जिनको आता हो, चलिए। वे दोनों नमस्कार करते हैं, इसका अनुवाद करें, वे दोनों नमस्कार करते हैं, इसका अनुवाद करें, जिनको आता है तो हाथ ऊंचा करो, हैं? सभी ने अच्छा एकदम सही उत्तर बताया है। वे दोनों नमस्कार करते हैं। वे दोनों का मतलब है तव, है ना, और नमतः ती तस अंति होता है। तो इधर कर्ता जो है तव है, तो क्रिया भी नमतः द्विवचन की ही लगेगी, तो नमतः या नमस्कारम कुरुतः, अगर इसको ऐसे कर नमस्कार करते हैं तो तव नमस्कारम कुरुतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से आज आपकी प्रश्नोत्तर की क्लास और सर संधि का प्रकरण पूर्ण हुआ है। तैयारी करें और इन 60 सूत्रों का पूरा पूरा रिवीजन कीजिए। कल पुनः मैं आपको इसी में और रिवीजन करा करके और पिछला अध्ययन भी थोड़ा सा कराऊंगी, और इस प्रकार से ही व्याकरण का संधि प्रकरण सर संधि का प्रकरण परिपूर्ण होता है। जय लो जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ लोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञान मती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जनो दासांग मई जिनवाणी माता की जय।